کون کون خوش ہے آج کی شام؟ ذرا یسوع مسیح کے جلال کے لیے زوردار تالیاں۔ جو بہن بھائی بائبل مقدس لے کر آئے ہیں وہ میرے ساتھ نکالیں۔ لوکا طبیب کی مار پر لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اس کا نو باب، نو باب اس کی 46 آیت سے ہم 47 آیت تک پڑھیں گے۔ لوک چیپٹر 9 ورس 46-47۔ نئے عہد نامہ میں سے لوکا طبیب کی مار پر لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اس کا نو باب اس کی 46 آیت سے ہم 48 آیت تک پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم سیکھیں گے تین باتوں پر غور کرتے ہوئے، مسلسل سٹڈی کرتے ہوئے، دیکھنا، سیکھنا اور عمل کرنا۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں ایک گفتگو چل رہی ہے جس پر ہم غور کریں گے۔ تو خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، لیکن یسوع نے ان کے دلوں کا خیال معلوم کر کے ایک بچے کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کر کے ان سے کہا، جو کوئی اس بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہاں پر جو بحث چل رہی ہے یسوع مسیح کے شاگردوں میں، وہ کون سی بحث ہے کہ ہم میں بڑا کون ہے؟ کیا کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ بات محسوس کی یا سوچا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑھائیں؟ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے کہ کبھی میں نے یہ سوچا نہیں کہ میں اپنے آپ کو بڑھاؤں یا اپنے آپ کو اعلیٰ مرتبے پر رکھوں یا اپنے آپ کو دوسروں سے افضل جانوں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، تو آپ سب جھوٹے ہیں۔ کیونکہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں جو بحث ہو رہی ہے وہ بحث کیا ہے کہ ہم میں بڑا کون ہے۔ جب یہی بات ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل میں، تو متی کی انجیل اس کے 18 باب کی 1-5 میں ان میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہم میں کون خدا کی بادشاہی میں بڑا ہے۔ بڑا کا جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، دراصل یعنی کہ کسی سے اپنے آپ کو اعلیٰ مرتبے پہ جاننا۔ تو سوال یہ ہے، کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ اپنے آپ کو بڑھانا؟ اگر نہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم نے سب نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر یہ بات، یہ سوال، یہ خیال اپنے دل میں رکھا ہے کہ میں کسی اور سے اعلیٰ ہوں، میں کسی اور سے بہتر ہوں، میں کسی اور سے، ہو سکتا ہے سلائی کڑھائی میں، ہو سکتا ہے پڑھائی میں، ہو سکتا ہے کام کاج میں، یا کسی اور ہنر میں، یا بہت دفعہ پاسبان ہوتے ہوئے بہت دفعہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں دوسرے پادری سے بہتر ہوں۔ اور اگر ہم اس بات کا انکار کریں تو ہم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیونکہ یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والے، اس کے حواری، اس کے شاگرد، اس کے پیچھے چلنے والے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کیسے عجیب عجیب معجزات کرتا تھا، جنہوں نے اپنے کانوں سے گواہیوں کو سنا کہ کس طرح اس کے کہنے سے بیمار، اس کے کہنے سے مردہ، اور اس کے کہنے سے طوفان تھم گیا۔ تو اس بات پر ذرا سوچیں گے کہ شاگردوں نے کیا کیا ہے، آپس میں بحث کرنا شروع کر دی، اور بحث کس بات پر ہے کہ ہم میں بڑا کون ہے، ہم میں بڑا کون ہے۔ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہی قسط، یہی سلسلہ اگر ہم آخر تک دیکھیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے یسوع مسیح کی مخالفت ہوگی، یسوع مسیح کو فقی فریسی کیا کریں گے جی، جھوٹے الزام لگا کے سردار قائم کیا کریں گے جی، बदनाम करेंगे और उसकी मौत की साजिश करेंगे, उसे धोखे से पकड़वाएंगे, उस पर झूठे इल्जाम लगाएंगे। और तब भी जब हम देखते हैं आखिरी शाम, जब यीशु मसीह ने जिसे ईद फसा की शाम कहते हैं, बाला खाना में अपने शिगिर्दों को जो पैर धोने का मकसद क्या था, यही बात थी कि उनमें क्या पाया जाता था जी, तकब्बर, और इस बात की बहस पाई जाती थी कि हम में बड़ा कौन है। मेरे साथ जरा देखें मरकुस की इंजील, मरकुस की इंजील उसका 9 बाब उसकी 38वीं आयत, मार्क चैप्टर 9 वर्स 38-40। मरकुस की इंजील जब हम उसका 9 बाब उसकी 38वीं आयत से देखते हैं, तो यहाँ पर फिर हमें इसी बात के बारे में मरकुस इस वाक्य को यूं लिखते हुए बयान करता है कि दरअसल वहां पर हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ जी। जब हम 33वीं आयत को पढ़ते हैं, फिर वो कफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा, तुम राह में क्या बहस करते थे। यीशु मसीह उनके ख्यालात से वाकिफ है और सवाल यीशु ने किया कि तुम्हारी आपस में बहस क्या चल रही थी। वो चुपचाप रहे क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। तीनों अनाजील में, यहां तक के चौथी अनाजील जो है यूहन्ना की इंजील, वहां पर इसका क्लाइमेट जिसे कहते हैं कि अंत बयान किया कि यीशु मसीह ने उनको सिखाने के लिए क्या किया है। इन तीनों अनाजील में लिखा है कि एक बच्चे को लाकर उनके दरमियान खड़ा कर दिया। तीनों नजीर में देखते हैं यीशु मसीह ने छोटे बच्चे को उनके दरमियान खड़े कर कहा कि जो कोई मुझे इस बच्चे की तरह कबूल करेगा वो क्या करेगा, मेरे भेजने वाले को कबूल करेगा और वो खुदा की बादशाही में क्या है जी, बड़ा है। तो तीनों अंजील में ये बहस चल रही है, मत्ती की अंजील में देखते हैं, लूका की अंजील में देखते हैं, मरकुस की अंजील में वो आपस में बहस कर रहे हैं। और आगे क्या हुआ, उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सबसे पीछे और सबका खादम बने, और एक बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया, फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है। तो अब सवाल फिर ये आता है, क्या कभी हमने अपने आपने को बुलाने की कोशिश की है, क्या कभी हमारे जहन में तकब्बर की इस सोच को अबलीस ने बोया है कि वो क्या बने जी, हमारा गुरूर बने, क्योंकि वो हमारी सोचों में इस तकब्बर की सोच को डालता है कि तुम दूसरे बच्चे से बेहतर हो, तुम दूसरे पासवान से बेहतर हो, तुम दूसरी बहन से बेहतर हो, तुम दूसरे लड़के से बेहतर हो। और बहुत दफा हम क्या करते हैं जी, अपने आप को बढ़ाने के तकब्बर में फूटते जाते हैं और सच से दूर रहते हैं। तो शिगिर्दों को देखते हैं, उनमें बहस है, इसलिए हम जो सीख रहे हैं कि आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अगर हमारी जिंदगी में ये बात चल रही है तो हमें खाकसार बनने की जरूरत है, हमें अपने आप को हलीम करने की जरूरत है, जिसके लिए फिलिप्पियों उसका 2 बाब उसकी 5वीं आयत में हमें एक मेयार बताया गया है, हमें एक तकाजा दिया गया है, हमें एक असूल या एक शुरुआत दी गई है कि कहां से शुरुआत करनी है। फिलिप्पियंस 2:5-following, फिलिप्पियों के खत में 2 बाब में जब हम देखते हैं तो वहां पर हम सब के लिए, मौजूदा कलीसिया के लिए, गुजरी हुई कलीसिया के लिए क्या है जी, एक मेयार रखा गया है कि एक मसीही शिगिर्द को कैसा होना चाहिए। पांचवी आयत में लिखा है, चौथी आयत से आपके लिए पढ़ देता हूं, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर करे। यानी कि हम अपने खुदी के खुद गर्जी में इतने मगन ना हो जाए कि अपने बगैर कोई और हमें नजर ना आए, हम अपने आप में इतने मगन ना हो जाए कि हम दुनिया में रहते हुए इस दुनिया में इतने मगन हो जाए कि खुदा को, खुदा के लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को, हमारे साथ बसने वाले लोगों को कोई भी ऐसा मौका ना दे जो देने की जरूरत है। अपने अहवाल पर यानी कि अपने हाल पर गौर करना, अपने आप पर गौर करना, जिसके बारे में दूसरे की जरूरत को देख के रद्द करना। किसी को अगर क्या है जी, खाकसारी के लिए खुदा खुदा खुदावन ने खाकसार बनाया है, तो उस पर हंसना और अपने आप पर क्या करना जी, तकब्बुर करना। तो अपने ही हाल पर नहीं बल्कि दूसरों के हाल पर भी नजर करें। और पांचवी आयत में हमें तकाजा बयान किया गया, हम सब मिलकर पढ़ेंगे, वैसा ही मिजाज रखो
जैसा
मसीह यीशु का भी था। मसीह यीशु का मिजाज कैसा था, आए मेरे साथ इससे पहले आगे बढ़े हम देखें, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 13, यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब हम देखते हैं। तो यहां पर हमें यीशु मसीह का मिजाज, यीशु मसीह का रवैया, यीशु मसीह की क्या है जी, वो सच्चाई नजर आती है जिसमें हमें ढलने की जरूरत है। गॉस्पल चैप्टर, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 17 फ्रॉम वर्स 1 13 फ्रॉम 1 टू फॉलोइंग। जब हम पहली आयत में पढ़ते हैं तो ईदे फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन शिगिर्दों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक रखता रहा। यीशु मसीह को जान पता था कि यहूदा चोर है, यहूदा से पकड़वाएगा, यहूदा लालची है, वो बेईमान है, वो भेड़ के रूप में भेड़िया है। और यीशु क्या करता रहा, उन सब से आखिर तक मोहब्बत करता रहा। वो जानता था उनमें बहसबाजी चल रही है, पतरस, याकूब और यूहन्ना और जब्दी के बेटों में गुफ्तगू है, यहां तक कि उनकी माँ आकर यीशु से सिफारिश करती है कि खुदा खुदा जब तू अपनी बादशाही में आए तो क्या करना, मेरे एक बेटे को अपनी दाहिनी तरफ और दूसरे को बाईं तरफ बहने का क्या देना जी, इख्तियार देना। तो इख्तियार हासिल करने के लिए, आला मर्तबा हासिल करने के लिए, जो हकीकत है वो दरअसल क्या है, दुनिया की नजर में उलट है। दुनिया कहती है आला मर्तबा हासिल करना है तो किसी की कुर्सी खींचो, किसी की टांग खींचो, या किसी को नीचा करो और उसकी जगह पर बैठ जाओ, ये दुनिया का नजरिया है। मसीह का नजरिया बिल्कुल उलट है। उसका फार्मूला यीशु मसीह ने बताया कि जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को क्या करे, छोटा करे, जो आगे आना चाहता है वो अपने आप को पीछे करे। अगर हमारे जहन में ये सोच अभी तक नहीं आई और हमने सच को कबूल नहीं किया कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं, तो हम झूठे हैं, आप झूठे हो, फरेब में हो, मगरूरी में हो, गरूर से, तकब्बर से भरे हो कि आप ये कहते हो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं किसी से आगे निकलूं। तो यीशु मसीह ने क्या किया जी, ईटे फदा से पहले जिनसे वो मोहब्बत रखता था, जब हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं, और जब अबलीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब कुछ, सब चीजें मेरे हाथ में कर दी और मैं खुदा के पास आया, खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर से बांधा, इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शिगिर्दों के पांव धोने और रुमाल कमर में बांधा था, उससे पूछना शुरू किया। कैसा मिजाज रखो, यीशु मसीह जैसा। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने बारे में कि इतने आदम खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। इब्ने आदम का रवैया क्या है? इफिसियों 2:2 उसकी 6 आयत में जब पढ़ते हैं तो लिखा है, अगरचे उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। हमारा रवैया क्या है? हमारा रवैया क्या है? तकब्बुर से भरा हुआ है हमारा रवैया। हमारे सोचों में जो फरेब का कीड़ा हमें खाता जाता है अंदर ही अंदर से, जो चोरी का बीज चोर बोने आता है, वो ये है कि तुम अपने आप को आला बनाओ। क्योंकि दुनिया का ये रीति रिवाज है कि अगर तुम अपने आप को आला बनाओगे तो तुम पालोगे, तुम अच्छे नजर आओगे, तुम आला नजर आओगे। लेकिन मसीही रवैया क्या है? उलट है। मसीहत क्या कहती है? अपने आप को छोटा करो, खुदा तुमको बड़ा करेगा। क्योंकि वो मगरूरों का सामना करता है और फरोतनों को क्या करता है जी? सरबुलंद करता है। और यही हुआ यहां पर। पत्रस फिर अपना रवैया, वही रवैया जो बड़बोला बड़े मुंह वाला रवैया उसका है। जब यीशु मसीह ने पांव धोने शुरू किए तो पत्रस कहता है, ये हो ही नहीं सकता कि खुदावंद तू मेरे पांव धो। यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं तुझे ना धो, अगर ये तू रवैया ना सीखे कि तुझे खाकसार होने की जरूरत है, मुझसे सीख के मैंने मालिक होते हुए खुदा होते हुए तुझके तेरे साथ ये किया, अगर मैं तुझे ना दूं तो तू पाक साफ नहीं हो सकता। और ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? यीशु मसीह ने क्या किया? उठा, पानी लिया, कमर से रुमाल बांधा और उनके पांव धोना शुरू किया और पहुंचना शुरू किया। तकब्बर से भरा हुआ शमौन बर यूना क्या कहता है? फिर शमौन पत्रस तक पहुंचा और उसने कहा है, खुदावंद क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं उसे तू अब नहीं जानता मगर बाद में जानेगा। और वो जानने वाला अभी कुछ 2 दिनों के बाद, जब वो यीशु का इनकार करेगा, जब वो अपने उस तकब्बर के बड़े तख्त से गिरेगा जो बड़े मुंह से उसने बोल निकाला है कि यीशु मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरा इनकार नहीं करूंगा। वो 3 दफा इनकार करके जब इसी बात की वापस आता है, और इसकी मंजरकशी क्या है? जरा यीशु मसीह यरूशलेम की गलियों में से गुजर रहा है और वो पानी के वो गिरता है और कोई उसे पानी पिलाने के लिए आता है और पत्रस दूर से खड़ा होकर उसकी नजरों में देखता है और पत्रस को देखकर यीशु कहता है, क्या तुझे याद है मैंने कहा था कि अब तू नहीं समझता लेकिन वो वक्त आएगा जब तू समझेगा। इसलिए यीशु मसीह ने आगे चलकर उससे कहा कि अगर मुझ मालक ने होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी क्या है जी? क्या हुआ? उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और उसे मुजरम ठहराने की बजाय क्या किया? उसे कहा, याद है उस रात मैंने क्या कहा था कि तुम्हारा पत्रस दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। तो यीशु मसीह का रवैया और मजाज क्या है? खुदा की सूरत पर था, उसने अपने आप को खादम बना लिया। खुदा के बराबर था, उसने उस अपने मर्तबा को कुछ नहीं समझा। और यही बात वो अपने शिगिर्दों के रवैये में, दिमाग में और रोजमर्रा की जिंदगी में ड्रिल करना चाहता था कि उनके नक्श हो जाए, ताकि उनको खुदा की बादशाही और उसके मियार का पता चल जाए कि दुनिया में रहते हुए दुनिया जैसे नहीं बल्कि दुनिया में रहते उस दुनिया के बनना है। जहां पर रवैया क्या है कि अगर तुम खाकसार बनोगे तो खुदा तुमको क्या करेगा? सरबुलंद करेगा। तो फिर सवाल करूंगा, क्या हमने कभी सोचा है अपने आप को दूसरों से आला? अगर आप इस बात पर मुत्तफिक नहीं तो आप झूठे हो कि आपने कभी यह सोचा ही नहीं कि मैं आला हूं। किसी से बहस की हो अपने हुनर के बारे में, अपने फन के बारे में, अपनी तालीम के बारे में, अपनी किसी और बात में, तो मैं चाहता हूं कि आज की शाम खाकसार बने, हलीमी का लबादा ओढ़ें। क्योंकि यीशु मसीह क्या करता है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। वो खुदा जिस्म में इंसान और खादम बनता है हमको सिखाने के लिए कि हम हलीमी सीखें, हम गुरूर से नहीं, हम तकब्बर से नहीं, हम अपने आप में अपने उस रवैये से ना भरे रहें कि जिसमें हम अपने आप को सोचेंगे कि मैं दूसरों से अच्छा हूँ। अगर आज की शाम आप यहाँ पर यह सोचते हैं कि आपने कभी ऐसा नहीं सोचा, तो आप उस फरीसी जैसे हैं जिसने खुदा की हैकल में खड़े होकर यीशु मसीह के रूबरू क्या कहता है कि मैं उस महसूल लेने वाले जैसा नहीं। तो इस तकब्बर के गंदगी को धोने का एक ही तरीका है, यीशु के पास आना। वो हमको धोकर पाक और साफ करता है, वो हमारे रवैयों को बदलता है, वो हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को बदलता है। इसीलिए मेरे साथ एक और हवाला देखें, एक और हवाला देखें और इस पर हम चंद एक बातें सीखेंगे। और ये बड़ा ही जबरदस्त सच है कि हमें कैसा मिजाज रखना है, कैसा तरीका कार रखना है, कैसी सोच रखनी है, कैसे खुदावन खुदा में जिंदगी बसर करनी है और इस जमीन पर खुदा के नाम को क्या देना है जी, जलाल देना है, ताकि सारा जलाल किसके नाम को मिले, खुदावन यीशु मसीह के नाम को मिले और हम सब कम होते जाएं और सारा जलाल किसको मिले, यीशु मसीह के नाम को मिले। मेरे हवाला जेल से निकल गया लेकिन पालूस रसूल के खतूत में लिखा है कि तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए, कि अगर तकब्बर है तो तकब्बर की जगह हलीमी होनी चाहिए, अगर नफरत है तो नफरत की जगह मोहब्बत होनी चाहिए, अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत की जगह क्या होना चाहिए जी। वो सब बातें जो खुदा को आला और उम्दा लगती हैं वो हमें करने की जरूरत है ताकि हम इस जमीन पर क्या ना हो जी, अपने आप को गुमराह ना करें। तो खुदावन खुदा क्या फरमाता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, ताकि दुनिया में रहते हुए हम हलीमी और फरोतनी से क्या करें जी, जिंदगी बसर करें। हाँ जी, मिल गया। कुलसियों 3 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, कलासियों चैप्टर 3 वर्स 12, पर खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल और तहम्बल का लिबास पहनो। हमें पाकीजगी का, प्यार का, दर्दमंदी का, मेहरबानी का, फरोतनी का, हिल का, तहम्बल का लिबास पहनना, ना के गुरूर का, ना के घमंड का, ना के बहस करते हुए कि मैं तुमसे आला हूं। और आगे क्या लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करें और एक दूसरे के कसूर माफ करें, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए हैं तुम भी वैसा ही करो। यह है मसीही रवैया। और आगे लिखा है, और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो तहम्मल, जो कमाल का पटका है, बांध लो। तो फिर सवाल पूछूंगा, क्या कभी हमने अपने आप को बढ़ाया है? क्या हमने कभी तकब्बर किया है? क्या हमने कभी गुरूर आया है? क्या कभी हमने अपने आप से झूठ बोला कि मैं दूसरे से अच्छी और अच्छा हूं? मेरी जिंदगी में आया, बहुत दफा आता है, रोज आता है। अगर आपकी जिंदगी में नहीं आया तो फिर आप अभी तक झूठ में हैं, गरूर में हैं, खाकसारी में नहीं, क्योंकि गरूर तो फरिश्तों में भी आता है, हम तो इंसान हैं। अगर हम इस सच को नहीं मानेंगे, हम कभी भी इस सच से शिफा नहीं पाएंगे। अगर हम अपने आप को समझते नहीं कि हम में गरूर नहीं, तो फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें झूठ से अपने आप को अंदर ही अंदर से उस गुरूर के कीड़े से कहेंगे कि खा मुझे, खा मुझे, खा मुझे, खा मुझे, और हमारा गुरूर हमें अंदर ही अंदर खाता जाएगा और हम उस गुरूर के गुलाम हो जाएंगे। और अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे कि मुझ में गुरूर नहीं, और ये बहुत बड़ा झूठ है। मुझे याद है एक बंदा, उसे कैंसर था और उसने इस कैंसर की मर्ज को जानते हुए भी ये मुनासिब नहीं समझा कि डॉक्टर की बात को माने, उसका इलाज करवाया जाए, उसकी दवाई खाई जाए। उसने इस बात को नहीं माना और उसका कैंसर क्या हुआ जी, उसे उस स्टेज पर ले आया कि वो मौत का शिकार हुआ। डॉक्टर ने उसे कह दिया कि तुझे कैंसर है, तुझे दवाई की जरूरत है, तुझे ये करने की जरूरत है, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं मुझे कैंसर है ही नहीं। बहुत दफा हम भी जब अपने गुरूर का इनकार करते हैं कि मैं मगरूर गुरूर और घमंडी और अपने आप को बढ़ाने वाली बढ़ाने वाला नहीं, तो फिर हमारे उस कैंसर के मरीज जैसी हालत है, वो अंदर ही अंदर से हमें खाएगा। और फिर पाकीज़गी, हलीमी, फरोतनी, दर्दमंदी और मोहब्बत परवान नहीं चढ़ेगी। सो आए हम खुदा के दूर चुके और अपने रवैयों पर गौर करें कि वैसा ही मजाज रखें जैसा मसीह यीशु का भी था, ताकि वो हमें धोकर पाक और साफ करे, ताकि वो हमें कहे कि मुझे तुम्हें धोना है, क्योंकि अगर मैं तुमको धोकर पाक साफ ना करूंगा तो तुम्हारी और मेरी रफाकत में क्या होगी, रुकावट होगी। और गुनाह चाहे वो गरूर का हो, चाहे वो जुबान का हो, चाहे वो किसी और बात का हो, वो हम में और खुदा में क्या डालता है जी, रुकावट डालता है। खुदावंद हम सबको हिकमत दनाई दे ताकि हम फरोतन बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन।